ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड न्यू जर्सी अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 26 मई 2024 के लिए है। विषय: आत्मा और शरीर। स्वर्णपथ। रोमियो। हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार हैं वो परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। उत्तरदायी अध्ययन मत्ती। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊं और पुरानियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा कि हे प्रभु, परमेश्वर ना करे कि तुझ पर ऐसा कभी नहीं होगा। उसने फिर कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपना आप का इनकार करे और अपनी सूली उठाए और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपने प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपने प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। पाठ उपदेश बाइबल में से भजन संहिता। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरी बात को तू सिथर रखता है। मेरे लिए माप की दूरमन भावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग मन भावना है। मैं यहोवा का धन्य करता हूँ, क्योंकि उसने मुझे सामर्थी दी है, वरुण मेरा मन भी मुझे रात को शिक्षा देता है। मैंने यहोवा के निरंतर अपने सामुख रखा है, इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। उत्पत्ति। तब यकूब ने शीर देश में अर्थात अदूम देश में अपने भाई ईसाव के पास अपने आगे दूत भेज दिए। वो दूत याकूब के पास लौटकर कहने लगे, हम तेरे भाई ईसाव के पास गए थे और वो भी तुझसे भीड़ करने को 400 पुरुष साथ लिए हुए चला आता है। तब याकूब निपुत डर गया और संकट में पड़ा, और ये सोचकर अपने संग वालों के और भेड़ बकरियों और गाय बैलों और ऊँटों के भी दो अलग अलग दल कर लिए कि यदि ईसाव आकर पहले दल को मारने लगे तो दूसरा दल भागकर बच जाएगा। फिर याकूब ने कहा, हे यहोवा, हे मेरे दादा इब्राहिम के परमेश्वर, तूने तो मुझसे कहा कि अपने देश अपनी जन्मभूमि में लौट जा और मैं तेरी भलाई करूँगा। तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं, कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आया, सो अब मेरे दो दल हो गए हैं। तेरे ऐसे ऐसे कामों में से मैं एक के भी योग्य तो नहीं हूँ। मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई ईसाव के हाथ से बचा। मैं तो उससे डरता हूँ, कहीं ऐसा न हो कि वो आकर मुझे और माँ समेत बच्चों को भी मार डाले। और उसने वो रात वहीं बिताई, और जो कुछ उसके पास था उसमें से अपने भाई ईसाव की भेंट के लिए छांट कर निकाला, और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर फूफटने तक उससे माले युद्ध करता रहा। तब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तो उसकी झांग की नस को छुआ, सो याकूब की झांग की नस उससे माले युद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर हुआ चाहता है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। اور اس نے یعقوب سے پوچھا، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، یعقوب۔ اس نے کہا، تیرا نام اب یعقوب نہیں پرنتو اسرائیل ہوگا، کیونکہ تو پرمیشور سے اور منوشوں سے بھی یدھ کر کے پربل ہوا ہے۔ یعقوب نے کہا، میں تیری بنتی کرتا ہوں کہ مجھے اپنا نام بتا۔ اس نے کہا، تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ تب اس نے اس کو وہیں آشیرواد دیا۔ تب یعقوب نے یہ کہہ کر اس ستھان کا نام فنیئل رکھا کہ پرمیشور کو آمنے سامنے دیکھنے پر بھی پران بچ گیا ہے۔ اتپتی۔ اور یعقوب نے آنکھیں اٹھا کر یہ دیکھا کہ عیسائی 400 پوچھ سنگ لیے ہوئے چلا آتا ہے، اور آپ ان سب کے آگے بڑھا اور 7 بار بھومی تک گر کر دنڈوت کی اور اپنے بھائی کے پاس پہنچا۔ تب عیسائی اس سے بھینٹ کرنے کو دوڑا اور اس کو ہردے سے لگا کر گلے لپٹ کر چوما، پھر وہ دونوں رو پڑے۔ ولاپ۔ ہم مٹ نہیں گئے، یہ یہوا کی مہا کرونا کا پھل ہے، کیونکہ اس کی دیا امر ہے، پرتی بھور وہ نئی ہوتی رہتی ہے، تیری سچائی مہان ہے۔ میرے من نے کہا، یہوا میرا بھاگ ہے، اس کارن میں اس میں آشا رکھوں گا۔ جو یہوا کی بات جوتے ہیں اور اس کے پاس جاتے ہیں، ان کے لیے یہوا بھلا ہے۔ یشایا۔ ایسا پیاسے لوگوں، پانی کے پاس آؤ، اور جن کے پاس روپیہ نہ ہو تم بھی آ کر مول لو اور کھاؤ، داکھ مدھو اور دودھ بن روپے اور بنا دام ہی آ کر لے لو۔ جو بھوجن واسطو نہیں ہے اس کے لیے تم کیوں روپیہ لگاتے ہو، اور جس سے پیٹ نہیں بھرتا اس کے لیے پاریشرم کیوں کرتے ہو؟ میری اور من لگا کر سنو، تب اتم واسطویں کھانے پاؤ گے اور چکنی چکنی واسطویں کھا کر سنتشت ہو جاؤ گے۔ کان لگاؤ اور میرے پاس آؤ، سنو تب تم جیوت رہو گے، اور میں تمہارے ساتھ صدا کی وچا باندھوں گا، ارتھات داؤد پر کی اٹل کرونا کی وچا۔ یشایا۔ جس اپواس سے میں پرسن ہوتا ہوں وہ کیا یہ نہیں کہ انیائے سے بنائے ہوئے داسوں اور اندھیر سہنے والوں کا جوا توڑ کر ان کو چھڑا لینا اور سب جوؤں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا؟ کیا وہ یہ نہیں کہ اپنی روٹی بھوکوں کو بانٹ دینا، اناتھ اور مارے مارے پھرتے ہوں کو اپنے گھر لے آنا، کسی کو ننگا دیکھ کر وستر پہنانا، اور اپنے جاتی بھائیوں سے اپنے آپ کو نہ چھپانا؟ تب تیرا پرکاش پھو پھٹنے کے نہیں چمکے گا، اور تو شیگر ٹھیک ہو جائے گا، تیرا دھم تیرے آگے آگے چلے گا، یہوا کا تیج تیرے پیچھے رکشا کرتے چلے گا۔ ادھارتا سے بھوکے کی سہایتا کرے اور دین دکھیوں کو سنتشت کرے، تب اندھیارے میں تیرا پرکاش چمکے گا اور تیرا گھور اندھکار دوپہر کا سا اجالا ہو جائے گا، اور یہوا تجھے لگاتار لیے چلے گا، اور کال کے سمے تجھے ترپت اور تیری ہڈیوں کو ہری بھری کرے گا، اور تو سینچی ہوئی باری اور ایسے سوتے کے سمان ہوگا جس کا جل کبھی نہیں سوکھتا۔ تسلنکیو۔ اور تمہاری آتما اور پران اور دہ ہمارے پربھو یشو مسیح کے آنے تک پورے پورے اور نردوش سرکشت رہیں۔ اب میں میری بیکر ایڈی دوارا کرسچن سائنس کی کتاب وگیان اور سوستھ شاستروں کی کنجی کے ساتھ کے سہا سمبندھی انش پڑھوں گا۔ وگیان اور سوستھ۔ بھگوان اور آتما ایک ہیں، اور یہ ایک سیمت دماغ یا ایک سیمت شریر میں کبھی بھی شامل نہیں ہے۔ آتما شاشوت ہے، دیویے ہے۔ آتما پران کے علاوہ کچھ بھی جیون کو وکاست نہیں کر سکتا، کیونکہ آتما سب سے بڑھ کر ہے۔ دیویے من منشے کی آتما ہے، اور یہ منشے کو سبھی چیزوں پر پربھتو پردان کرتا ہے۔ منشے کو بھاوتک آدھار سے نہیں بنایا گیا تھا، نہ ہی ان بھاوتک قانونوں کا پالن کرنے پر پرتیبندھ لگایا گیا ہے جو آتما نے کبھی نہیں بنائے۔ ان کا پرانت من کی اچھ ودھیوں میں، ادھیاتمک ودھیوں میں ہے۔ مانو وچار نے آتما شبد کے ارتھ کو اس پریکلپنا کے مادھیم سے ملا دیا ہے کہ آتما ایک دشت اور اچھی بدھی دونوں ہے، پدھارت میں نواس کرتی ہے۔ شبد دیوتا کا اچت اپیوگ ہمیشہ شبد ایشور کو پرتی ستھاپت کر کے پراپت کیا جا سکتا ہے۔ जहां बहुत अधिक अर्थ की आवश्यकता होती है। नए मामलों में शब्द का उपयोग करें और आपके पास वैज्ञानिक संकेत होगा। क्रिश्चियन साइंस में इस्तेमाल के रूप में जीव आत्मा आत्मा या ईश्वर का पर्याय है, लेकिन विज्ञान से बाहर जीव आत्मा भौतिक अनुभूति के साथ सामान्य है। ठीक से समझा जाए तो एक भाविक सामग्री के रूप में रखने के बजाय मनुष्य के पास एक संवेदनाहीन शरीर है और ईश्वर मनुष्य की आत्मा और सभी अस्तित्व की अपने स्वयं के व्यक्तित्व सिद्धभाव और अमरता में सदा रहने वाले मनुष्य में इन गुणों को लागू करते हैं। मन के माध्यम से कोई बात नहीं है। मानवीय मतों को मनोरंजन करने और विज्ञान होने को अस्वीकार करने का एकमात्र बहाना हमारी आत्मा का नश्वर ज्ञान है। ज्ञान जो केवल दिव्य विज्ञान की समझ के लिए उपजाता है, वो समझ जिसके द्वारा हम पृथ्वी पर सत्य के राज्य में प्रवेश करते हैं और सीखते हैं कि आत्मा अनंत और सर्वज्ञ है। आत्मा और सामग्री प्रकाश और अंधेरे से अधिक नहीं है। आत्मा से प्रेरित पितृ पुरुषों ने सत्य की आवाज सुनी और भगवान के साथ सुचित रूप से बात की, जैसे कि आदमी आदमी से बात करता है। याकूब अकेला था, त्रुटि के साथ कुश्ती, जीवन पदार्थ और बुद्धिमता की एक नश्वर भावना से जूझते हुए अपने झूठे सुख और पीड़ा का साथ अस्तित्व के रूप में जब एक दूत सत्य और प्रेम का संदेश लाया, उसे दिखाई दिया और पाप या शक्ति उसकी त्रुटि, जब तक कि उसने इसकी सत्यता को नहीं देखा और सत्य इस प्रकार समझा जा रहा है, उसे दिव्य विज्ञान के इस फनियल में आध्यात्मिक शक्ति प्रदान की। तब आध्यात्मिक प्रचारक ने कहा, मुझे जाने दे क्योंकि भोर हुआ चाहता है, मतलब सत्य और प्रेम का प्रकाश तुम्हारे ऊपर है। मगर पितृस्ता ने उसकी त्रुटि और उसकी मदद की आवश्यकता को मानते हुए इस शानदार प्रकाश पर अपनी पकड़ तब तक ढीली नहीं की जब तक कि उनका स्वभाव बदल नहीं गया। जब याकूब से पूछा गया, तुम्हारा नाम क्या है, उसने सीधा उत्तर दिया और फिर उसका नाम बदलकर इसराइल कर दिया गया, क्योंकि एक राजकुमार के रूप में उसने परमेश्वर और मनुष्यों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। तब याकूब ने अपने छुड़ाने वाले से पूछा, तेरा नाम क्या है, लेकिन इस प्रश्न को रोक दिया गया क्योंकि संदेशवाहक कोई साकार पुरानी नहीं था जिसने भजनकार के शब्दों में उसकी आत्मा को पुनर्स्थापित किया, उसे होने का आध्यात्मिक एहसास दिया और उसकी भावतिक समझ को धिकारा। इस प्रकार याकूब के संघर्ष का परिणाम सामने आया। उसने आत्मा की आध्यात्मिक शक्ति के साथ भावतिक त्रुटि पर विजय प्राप्त की थी। इससे मनुष्य बदल गया। उन्हें अब याकूब नहीं बल्कि इसराइल कहा जाता था, जो भगवान का राजकुमार या भगवान का संकेत है जिसने अच्छी लड़ाई लड़ी थी। उसे उन लोगों का पिता बनना था जिन्होंने ईमानदारी से प्रयास करके भावतिक इंद्रियों पर आत्मा की शक्ति के प्रदर्शन का अनुसरण किया, और पृथ्वी के वो जन जिन्होंने उसके उदाहरण का अनुसरण किया, उन्हें इसराइल के बच्चे कहा जाना चाहिए जब तक कि मसीहा उनका नाम नहीं बदल देता। ये समझ के अहंकार मन है और ये के एक मन या बुद्धि है। एक बार में नश्वर अर्थ की त्रुटियों को नष्ट करने और अमर भावना की सच्चाई की आपूर्ति करने के लिए शुरू होता है। ये समझ शरीर को सामान जैसे पूर्ण बनाती है। ये तंत्रिकाइयों, हड्डियों, मस्तिष्क इत्यादि को मालिक के बजाय नौकर बनाता है। यदि मनुष्य दिव्य मन के नियम से संचालित होता है तो उसका शरीर हमेशा की जिंदगी और सच्चाई और प्रेम को प्रस्तुत करने में है। मनुष्यों की महान गलती ये है कि उस आदमी को भगवान की छवि और समानता को मानने के लिए भावतिक और आत्मा, अच्छाई और बुराई दोनों को मानते हैं। आत्मा के पास आत्मा को प्राप्त करने के लिए अनंत संसाधन हैं और खुशी अधिक आसानी से प्राप्त की जाएगी और हमारे रखने में अधिक सुरक्षित होगी अगर आत्मा में मांग की जाए। अकेले उच्च आनंद अमर आदमी के क्रोध को संतुष्ट कर सकते हैं। हम व्यक्तिगत समझदारी की सीमा के भीतर खुशी का संचार नहीं कर सकते। इंद्रियां वास्तविक आनंद नहीं देती हैं। मानव के हित में अच्छाई बुराई पर अध्यात्म और पशु प्राधिपति होना चाहिए, परंतु सुख कभी नहीं जीता जाएगा। मनुष्य की उच्चतर प्रकृति नियम द्वारा शासित नहीं होती। यदि ऐसा होता तो ज्ञान का क्रम उलट जाता। जीवन के बारे में हमारे झूठे विचार शाश्वत सद्भाव को छुपाते हैं और उन बुराइयों को जन्म देते हैं जिनकी हम शिकायत करते हैं। चूंकि नश्वर लोग भौतिक नियमों में विश्वास करते हैं और मन के विज्ञान को अस्वीकार करते हैं, इसलिए ये भौतिकता को पहले और आत्मा के श्रेष्ठ नियम को अंतम नहीं बनाता है। सूर्य उदय को देखने में कोई पता है कि ये इंद्रियों के सामने सबूतों का खंडन करता है कि ये विश्वास है कि पृथ्वी गति में है और सूर्य आराम में है। चूंकि खगोल विज्ञान सावर प्रणाली के आंदोलन की मानवीय धारणा को उल्टा देता है, इसलिए मसीही विज्ञान आत्मा और शरीर के प्रतीत होने वाले संबंध को उल्टा देता है और शरीर को मन का सहायक बनाता है। इस प्रकार ये मनुष्य के साथ है जो स्नेहमशील मन का विनम्र सेवक है। हालांकि ये समझदारी को अन्यथा प्रकट करता है, लेकिन हम इसे कभी नहीं समझेंगे जबकि हम स्वीकार करते हैं कि आत्मा शरीर या मन में है और वो आदमी गैर बुद्धि में शामिल है। शरीर या आत्मा ईश्वर अपरिवर्तनीय और शाश्वत है और मनुष्य आत्मा ईश्वर के साथ सह अस्तित्व रखता है, क्योंकि मनुष्य ईश्वर की छवि है। जैसे जैसे मानव विचार एक अवस्था से दूसरे चरण में बदलता है, पीड़ा और दर्द, अहितता, दुख और आनंद, भय से आशा और विश्वास से समझ तक दृश्य अभिव्यक्ति अंतम रूप से मनुष्य द्वारा शासित होगी, भौतिक अर्थ से नहीं। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में शापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समर्थ कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, पारोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परमाश देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझावों से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।